بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir اور ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir. اور آج انداز جہاں میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے ہندوستان میں بدعنوانی اور انا ہزارے کی تحریک. تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہندوستان میں بدعنوانی کے خلاف انا ہزارے کی تحریک جاری ہے. جن لوک پال بل منوانے کے لیے انہوں نے بھوک ہڑتال کر رکھی ہے اور آج ان کی بھوک ہڑتال کا پانچواں دن ہے. بھوک ہڑتال کے 3 دن تہاڑ جیل میں گزرے ہیں اور کل سے وہ دہلی کے رام لیلا میدان میں موجود ہیں. اس درمیان ہندوستان کے تقریباً تمام شہروں میں انا ہزارے کی حمایت میں مظاہرے ہو رہے ہیں اور اسی کے ساتھ رام لیلا میدان میں بھی ہزاروں لوگ موجود ہیں. رپورٹ کے مطابق انا ہزارے کو ہندوستان کی مرکزی حکومت نے لوک پال بل کے بارے میں مذاکرات کی دعوت دی ہے جو رپورٹ کے مطابق انہوں نے مسترد کر دی ہے اور انہوں نے اسی کے ساتھ حکومت کو 30 اگست تک کی مہلت دی ہے کہ اگر اس تاریخ تک جن لوک پال بل منظور نہ کیا گیا تو پھر اس وہ آخری دم تک بھوک ہڑتال جاری رکھیں گے اور اسی کے ساتھ جیل بھرو تحریک بھی پورے ہندوستان میں شروع کر دی جائے گی. جہاں تک بدعنوانی کے خلاف مہم کا تعلق ہے رپورٹوں کے مطابق ہندوستان کا ہر طبقہ اور پورا ہندوستان بدعنوانی کے خلاف انا ہزارے کی تحریک کا حامی ہے. لیکن جن لوک پال بل کے سلسلے میں بہت سے لوگ جہاں ان کی حمایت کر رہے ہیں وہیں بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہندوستان میں جو قوانین موجود ہیں اور لوک پال بل جو ہندوستان کی حکومت نے تیار کیا ہے اس کے ذریعے بھی بدعنوانی پر قابو پایا جا سکتا ہے. اصل مسئلہ بدعنوانی کا خاتمہ ہے, اصل مسئلہ جن لوک پال بل یا لوک پال بل کا نہیں ہے. ہمارے ساتھیوں نے بتایا کہ اس وقت ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے ہندوستان کے سینئر سیاستدان ممتاز تجزیہ نگار اور سینئر سفارتکار ایم افضل صاحب سے جو سابق رکن پارلیمنٹ ہیں اور کئی ملکوں میں ہندوستان کے سفیر رہ چکے ہیں. ایم افضل صاحب السلام علیکم. جناب اس وقت بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بدعنوانی کے خلاف وہ مہم اور جن لوک پال بل کا مطالبہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں, آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟
دیکھیے جہاں تک بدعنوانی کا تعلق ہے ہندوستان کے اندر بدعنوانی جس انداز سے بڑھی ہے اس سے ہر خاص و عام پریشان ہے اور یہ ایک عوامی مدعا ہے, ایک ایشو ہے جس سے کسی بھی حالت میں انکار نہیں کیا جا سکتا.
جی
لیکن جہاں تک انا ہزارے کے موومنٹ کا تعلق ہے, ان کی تحریک کا تعلق ہے, اس تحریک کے تعلق سے میں یہ کہوں گا کہ یہ بڑی حد تک ایک ضد پر مبنی تحریک معلوم ہوتی ہے. اور ابھی آپ نے فرمایا کہ ہندوستان بھر سے اس کو حمایت حاصل ہے, میں آپ کی غلط فہمی کو دور کرنا چاہتا ہوں کہ انا ہزارے کی پورے موومنٹ کے اندر چاہے لاکھوں لوگ جمع ہو رہے ہوں لیکن آج کی تاریخ تک جب تک کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس موومنٹ میں اقلیتیں خصوصاً مسلمان, کمزور طبقات خصوصاً دلت, بیکورڈ کلاسز, سکھ, یہ جو ہندوستان کا 70% حصہ ہے وہ اس تحریک کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے. یہ تحریک صرف شہروں تک ہے, گاؤں اور دیہات اس کے اندر شامل نہیں ہے. اس کے اندر جو دوسرا جن لوک پال بل کا, جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ مدعا الگ ہے, بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ مدعا بالکل الگ ہے. انا ہزارے اور ان کے ساتھی غالباً عوامی تحریک کے نتیجے میں اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں کہ وہ ہندوستان میں پارلیمنٹ، آئین اور چنے ہوئے نمائندوں سے بھی اوپر ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کو یہ غلط فہمی ہے اور آنے والے وقت میں ان کی یہ غلط فہمی خود بخود دور ہو جائے گی. ابھی تک انا ہزارے کی تحریک میں ایک بھی ممبر پارلیمنٹ، ہندوستان میں 800 ممبر پارلیمنٹ ہیں، ان 800 ممبران پارلیمنٹ میں ایک بھی ممبر پارلیمنٹ نے ان کی تحریک میں جا کر کے حصہ نہیں لیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان کی گرفتاری کے خلاف پوری پارلیمنٹ میں ہنگامہ ہوا اور ان کی گرفتاری کو کی مذمت بھی کی گئی پارلیمنٹ کے ممبران کی طرف سے، بہت سی پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انا ہزارے جو ڈکٹیٹ کریں گے اس کو حکومت اور ہندوستان کے عوام قبول کر لیں گے.
بہت بہت شکریہ احمد افضل صاحب، لائن پہ موجود رہیے گا.
یہی ہے وہ بات میری سمجھ میں آتی ہے
جی،
کہ آپ نے خود ہی کہا کہ تحریک الگ ہے اور لوک پال بل الگ ہے.
جی بہت بہت شکریہ احمد افضل صاحب، لائن پہ موجود رہیے گا. اور ناظرین، ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے ہندوستان کے ایک اور سینئر سیاستداں، ہندوستانی کمیونسٹ پارٹی کے مرکزی رہنما اتل کمار انجان صاحب سے. انجان صاحب، آداب عرض ہے.
آداب آداب حضور، کیسے؟
جناب، بدعنوانی کے خلاف انا ہزارے کی جو تحریک ہے اس کے بارے میں ہم آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں.
ہندوستان کے اندر پورا ماحول سیاسی اس وقت گرم ہے
جی.
ایک طرف وہ طاقتیں ہیں جو ہندوستان کے اندر بھرشٹاچار اور بدعنوانی کی حمایت کرنے والی طاقتیں ہیں، اور دوسری طرف پورا ملک کے اندر ایک سمجھ بن کر اٹھی ہے کہ یہ 64 سال کی آزادی کے بعد اس ملک میں جو بدعنوانی ہے اور جو لوٹ اور کھسوٹ ہے، سرکاری اداروں کے اندر جو لوٹ کی چھوٹ کا ایک نیا عالم برقرار ہو گیا ہے، اور جسے کوشش کی جا رہی کہ ہندوستان کے ہر شعبے میں اور ہندوستان کے ہر سرکاری اور غیر سرکاری، پرائیویٹ، نجی، تمام حلقوں کے اندر اسے ایک دم منظم کر دیا جائے، اس کے خلاف لوگ آج کراہ اٹھے، کراہ کر چیخ رہے ہیں. سیاسی پارٹیاں بھی خوب بول رہی ہیں. اور اس بات کو سمجھ لیجئے کہ لوک پال کا سوال ایک انا ہزارے نے اٹھایا. انا ہزارے ایک سمبل ہو گئے دنیا کے اندر. ہر تحریک میں عوام جب جٹتے ہیں تو کسی نہ کسی کو اپنا ایک سمبل بنا لیتے ہیں. امریکہ میں مارٹن لوتھر کنگ کو لوگوں نے ناگرک آزادی کے لیے، سول رائٹس کے لیے اپنا تحریک کا نیتا بنا لیا، ایک آئیکن بنا لیا، ایک سمبل بنا لیا. ہم نے خود اپنی آزادی کی لڑائی میں مہاتما گاندھی کو اپنا سمبل بنا لیا، بھگت سنگھ، سکھدیو، راج گرو، اشفاق اللہ اور چندر شیکھر آزاد اور رمن سنگھ کو بنا لیا، نیتا جی سبھاش چندر بوس کو بنا لیا. بہت بڑا ملک تھا. ایسے دنیا کے اندر تمام ہوئی، جیسے ایک لڑائی ہوئی ایک زمانے کے اندر فلسطین کے حق اور انصاف کی لڑائی ہوئی تو یاسر عرافات اس کے اندر نیتا ہو گئے، اس کے سمبل بن گئے. ایک سمبل بن گئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں لیلا خالد، اس کی ایک دوسرے طرح کی سمبل بن گئی. امریکہ کے اندر بعد میں اینجلا ڈیویس ایک شخصیت بن کے ابری. تو میں اس بات کو کر رہا ہوں، اسی طرح سے انا ہزارے آج ہمارے ملک کے اندر وہ جو لگاتار 42 سال سے حکمراں، چاہے وہ این ڈی اے کی سرکار رہی ہو، بی جے پی کی، اور چاہے وہ کانگریس کی سرکار رہی ہو، لوک پال کے سوال پر وہ بھاگتے رہے ہیں. اور کوئی نہیں چاہتا تھا کہ پرائم منسٹر، ہندوستان کے وزیر اعظم، لوک پال، ایمبوڈس مین یا اس کی پرتھی میں، اس کی زد میں آویں. اس لیے ہر آدمی اس سے بچتا رہا جو برسر اقتدار رہا ہے، جو پاور میں رہا ہے. اب اس کا ایک ہی ادھارن میں دے سکتا ہوں، جب این ڈی اے اٹل بہاری واجپئی کی بی جے پی کی سرکار یہاں تھی ملک میں، تب پارلیمنٹری کمیٹی جو اس سوال پر کہ لوک پال کی جد میں پرائم منسٹر کو لایا جائے یا نہ لایا جائے، اس کے لیے پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی تھی، اور اس اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین جو آج لوک سبھا میں کانگریس پارٹی کے لیڈر ہیں اور ہندوستان کے فائنانس منسٹر ہیں پرنب مکھرجی صاحب، اس اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین تھے، اور انہوں نے جو پارلیمنٹ کو تجویز پیش کی سبھی پارٹیوں کی طرف سے ایک رائے ہو کر کے، اور انہوں نے یہ پیش کیا جس میں ایک بھی ڈسینٹنگ نوٹ نہیں ہے، ایک بھی مخالفت کی آواز نہیں ہے، جس میں یہ کہا گیا پرنب مکھرجی صاحب نے پریس کانفرنس کر کے دیش کی پارلیمنٹ کو وہ اپنی طرف سے پارلیمنٹری کمیٹی کی طرف سے رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم کو، پرائم منسٹر کو، پرائم منسٹر کے دفاتر کو لوک پال کی جد میں رہنا چاہیے اور آنا چاہیے. میں اس کی تائید کرتا ہوں. لیکن وہی پرنب مکھرجی صاحب، حالات بدل گئے، سیاست بدل گئی، پارٹی بدل گئی، پارٹی کے جو لوگ برسر اقتدار تھے सत्ता पर बैठे थे वो बदल गए, और वही प्रणब मुखर्जी आज कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को अगर लोकपाल की जगह ले आया गया तो मुल्क का निजाम जो है वो कसमसा जाएगा, वो लहरा जाएगा, वो गिर जाएगा, उसकी चूले ढीली हो जाएंगी, वो एक ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। ये आप समझ लें इसलिए कि जो बरसर इख्तदार होता है वो करप्शन और बदउनवानी का ठेकेदार हो जाता है। यही हाल बीजेपी का था, वो भी नहीं चाहते थे, जब वो पावर में नहीं थे तो वो भी जो है कह रहे थे कि आना चाहिए लोकपाल को, और जब वो पावर में आ गए तब वो नहीं इसकी हिमायत कर रहे थे। इसलिए आज जनता इसको समझ गई है, और जिस तरह से लूट देश में हुई है, आजाद हिंदुस्तान में लोग थक गए इस लूट से, और लूट अपनी चरम पर पहुंच गया, अपनी बुलंदी पर पहुंच गया, अपने इसने अपने एक नया इकबाल हासिल कर लिया, और वो था 2G स्पेक्ट्रम 1,76,000 करोड़, 90,000 करोड़ कॉमनवेल्थ खेल के नाम पर, और दूसरे तरफ 2,00,000 करोड़ रुपया कांडला पोर्ट पर है। हसन अली घोड़े के व्यापारी जो एक आम मामूली आदमी, वो अरबों खरबों डॉलर का इंतजाम कर रहा है, मुल्क की सरकार बैठे देख रही है। इससे लोगों में बदनाम, और इसलिए आज ये लड़ाई है कि प्राइम मिनिस्टर को लोकपाल की जद में लाया जाए, महंगाई के खिलाफ है, बदउनमानी के खिलाफ है, सरकारी लूट के खिलाफ है, इस सब के खिलाफ, और पूंजीवाद जिसको कहते हैं कैपिटलिज्म जो अपनी कोख से पैदा करता है भ्रष्टाचार बदउनमानी, उसके खिलाफ लोग खड़े हो गए। और सिविल राइट जमहूरी हुकूक रहेंगे मुल्क के अंदर, इस गांधी के देश में अपनी हक और इंसाफ की बात करने के लिए अनशन की इजाजत होगी कि नहीं होगी, ये सारे सवालों को लेकर आज खड़े हुए हैं। और इसलिए पार्लियामेंट भी आज एक खामोशाई नहीं बनकर रह सकती, इसे कोई ना कोई फैसला करना होगा, और जो लोग इसके खिलाफ खड़े होंगे वो लोग इतिहास में चले जाएंगे। और जहां तक मैं जिस पार्टी से ताल्लुक रखता हूं, हम लोग तो इसके खिलाफ है। सिंधिया के 64 साल में हवाला दिवाला घोटाला चौटाला में हम लोग फंसे नहीं है। आज तक हमारे हिंदुस्तान के बाएं बाजू की महाज के लोगों पर, हिंदुस्तान के कम्युनिस्टों पर कभी सीबीआई का छापा नहीं पड़ा, इनकम टैक्स का छापा नहीं पड़ा, हम लोग कभी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बदउनमानी भ्रष्टाचार करप्शन के मामले में बेल लेने नहीं गए, और इसीलिए हम बेदाग से करते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया अंजान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, लाइन पे मौजूद रहिएगा। अफजल साहब
जी,
जनाब ये हुकूमती बिल में और टीम अन्ना का जो तैयार करदा जन लोकपाल बिल है, उसमें बुनियादी फर्क क्या है?
बुनियादी फर्क तो 7-8 फर्क हैं
जी,
और काफी उसके बारे में लिखा जा चुका है और हर अखबार में आया है, जैसे वजीर आजम को उसमें शामिल करना, कुछ जजेस को उसमें शामिल करना, कोर्ट्स को उसमें शामिल करना, कुछ चीजों में है। लेकिन मैं एक प्राइवेट मेंबर बिल जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया है, वो यूं का तू जो अन्ना का बिल है, तकरीबन वही बिल पार्लियामेंट में गालिबन पेश हो रहा है या पेश कर दिया गया है, उसकी चर्चा कल से हो रही है। तो खुद भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया कि नहीं, प्राइवेट मेंबर बिल नहीं होना चाहिए, सरकारी बिल होना चाहिए। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अगर पार्लियामेंट में वो बिल आता है, और इसमें अभी यकीनन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बातचीत का कोई दौर फिर दोबारा से शुरू होगा, आज भी कुछ बातचीत हुई है इस सिलसिले में, उसकी तफसीलात तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये कि मुझे लगता है कि ये तहरीक वो चला रहे हैं, उनकी तहरीक से किसी को एतराज़ नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि तहरीक कुछ भी हो, आवामी किसी भी तरह की, मैंने खुद ही कहा कि अभी भी आज भी 70% जो मुल्क की वीकर सेक्शंस हैं और वो तमाम लोग हैं वो इसमें शामिल नहीं है, और ये शहरों की हद तक महदूद है, इंटेलेक्चुअल क्लास सिविल सोसाइटी के लोग हैं जिन्होंने इस तहरीक को बढ़ाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तहरीक जो है इसको आगे बढ़ाने में शायद लोकपाल बिल का या खुद अन्ना हजारे का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है, बल्कि प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। हमारे भाई अंजान साहब अभी बहुत बातें कर रहे थे और ये भी फरमा रहे थे कि उनकी पार्टी या उनका जो गठजोड़ है उस पर कभी आज तक इस तरह के सवालात नहीं उठाए गए, बात उनकी बड़ी हद तक सही है। उसके बावजूद ये बदकिस्मती की बात कहिए कि बरसों के बाद वो चुनाव हार गए, बंगाल हार गए और उनके हाथ से पूरा बंगाल निकल गया। तो अगर वो उनके खिलाफ क्या इशू था ये तो वही बेहतर जानते होंगे, लेकिन जो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं वो भी अवामी वोट से हार गए। आज अन्ना हजारे जिसको लेके चल रहे हैं उन्होंने इस तरफ तवज्जो नहीं दिलाई। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अन्ना हजारे की इस तहरीक के अंदर मुसलमान क्यों नजर नहीं आता? क्या वो करप्शन के खिलाफ नहीं है? दलित क्यों नजर नहीं आता? क्या वो करप्शन के खिलाफ नहीं है? वीकर सेक्शंस जो दूसरे समाज के हैं वो क्यों नजर नहीं आते? क्या वो करप्शन के खिलाफ नहीं है? आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये तहरीक जैसी भी है, जी जैसी भी है, लेकिन ये बात इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये अवामी तहरीक जरूर है लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान की तहरीक नहीं है, जैसा कि अभी अंजान साहब ने दावा किया। और अक्सर ऐसे मौके आए हैं जब किसी इशू पर लाखों की भीड़ जो है वोट क्लब पर आकर इकट्ठी हो गई, लेकिन वो तमाम सोसाइटी के हर तबके को रिप्रेजेंट नहीं करती थी। और इस बात से क्या अतुल अंजान साहब इनकार करेंगे कि आज अन्ना हजारे की पूरी तहरीक के पीछे असल हाथ किसका है? आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, हर आदमी ये बात जानता है। तो जो आरएसएस तहरीक चला रही है वो उसको एक बहुत अच्छा कहना चाहिए लबादा जो है करप्शन के खिलाफ। मैं अन्ना हजारे की नीयत पर बिल्कुल शुबा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अन्ना हजारे एक ईमानदार बहुत सच्चे गांधीवादी लीडर हैं, लेकिन आज उनकी इस तहरीक को या उनके इस इश्यूज को कुछ ऐसे ताकतें एक्सप्लॉइट कर रही हैं जिनका इस मुल्क में कोई अच्छा इमेज नहीं है, जो खुद गले गले तक करप्शन में डूबे हुए हैं। और ये कहना सरकार का तो काम ही यही होता है, ये कहना कि हर सरकार जो है वो करप्शन को बढ़ावा देती रही है और करप्शन को इसी सरकार के दौरान तीन मिनिस्टर्स और तीन लोग जो हैं अहदेदार आज जेल की हवा खा रहे हैं। तो करप्शन के खिलाफ कार्रवाई तो इस सरकार के अंदर भी हुई है, लेकिन आज मसला सारा ये है कि समाज ने एक ऐसी शक्ल ले ली है कि जब तक आदमी खुद करप्शन नहीं करता तब तक वो बड़ा ईमानदार रहता है, जब उसको खुद करप्शन करने का मौका मिलता है तो फौरन वो अपनी दुकान खोल देता है। मैं 100% लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन जनरल इस देश के अंदर माहौल ऐसा बना हुआ है कि जिन लोगों को मौका नहीं मिलता वो सब कुछ करने के वो सबसे बड़े ईमानदार रहते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वो सबसे बड़े बेईमान बन जाते हैं। अब क्या करें, बदकिस्मती से ये माहौल इस मुल्क के अंदर चल रहा है और मैं समझता हूँ इसके लिए सब जिम्मेदार हैं। तो इस लड़ाई को मिलजुल करके ही आगे बढ़ाना पड़ेगा और मैं ये समझता हूँ कि अन्ना हजारे की इस तहरीक का एक अवामी फायदा ये जरूर हुआ है कि आम लोग ये सोचने लगे हैं कि करप्शन के खिलाफ कैसे लड़ा जाए। जहां तक बिल का ताल्लुक है मैं आपको एक बात बहुत बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ, पहले से बहुत सारे कानून मौजूद हैं लेकिन कानून भी जब ही काम करता है जब आवाम उसके साथ होते हैं। अभी तक मसला ये है कि आवाम सियासी पार्टियां और दूसरे जो इदारे हैं वो इसमें आज ये एक जमाने में बड़ी बात की जाती थी कि एनजीओस जो है बड़ा अच्छा काम करेंगी और बहुत अच्छा, और हुकूमत के तमाम इदारों को नल एंड वाइट करके एनजीओस को बहुत सारे काम दिए गए। क्या आप जानते हैं कि एनजीओस के नाम पर आज कितना बड़ा घपला हो रहा है, कितने बड़े घोटाले हो रहे हैं, कैसे लोग फर्जी एनजीओस चलाते हैं, करोड़ों रुपया जो है गवर्नमेंट से लेकर के जिन कामों के लिए लेते हैं वहां तक नहीं पहुंचता। तो करप्शन तो समाज के हर हिस्से में है, चाहे वो जुडिशियरी हो, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो। मैं तो बहुत पहले जब पार्लियामेंट के अंदर जैन हवाला केस हुआ था उस वक्त मैंने नरसिम्हा राव जी के जब वजीर आजम थे उस वक्त कहा था कि आपने ये जो पिंडारा बैक्स खोला है आप खुद भी इसमें गिरोगे। और मैं ये नहीं मानता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ सियासतदान बेईमान है, मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान के अंदर एग्जीक्यूटिव भी बेईमान है। मेरा ये मानना है कि आज जज के आज कोर्ट के अंदर जब आदमी दाखिल होता है तो दरवाजे से लेकर के पेशकार तक आदमी को रिश्वत देनी पड़ती है। तो ये तो सभी इसमें लिप्त हैं और इसको खत्म करने के लिए पूरे समाज की एक जरूरत इसमें आएगी। किसी एक कानून से और किसी एक लोकपाल से मैं नहीं समझता कि कोई मसला हल होने वाला है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया, लाइन पे मौजूद रहिएगा। अंजान साहब
जी,
अफजल साहब की गुफ्तगू मुलाहिजा फरमाई। एक बात जो उन्होंने कही वो ये कि जो अन्ना हजारे की तहरीक है इसमें दलित और मुसलमान शामिल नहीं है और दीगर गांव के लोग भी शामिल नहीं है, ये शहरों तक महदूद है सिर्फ तहरीक।
मेरे ख्याल से अफजल साहब ने नाइंसाफी कर दी अपनी ही बात के साथ। आखिर में वो कहने लग गए कि करप्शन का बहुत बड़ा मसला है और लोग उठ खड़े हैं, अन्ना हजारे की इस मुहिम के साथ है। लेकिन ये हिंदुस्तान के अंदर कुछ सियासतदान लोगों का अपना काम है, मुसलमान देखेंगे, दलित देखेंगे, गांव देखेंगे। किस मुसलमान की बात कर रहे हैं अफजल साहब? मुसलमान कोई अलग है हिंदुस्तान से? यही सब सेकुलर, हम इंक्लूजन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं या सेक्लूजन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं? इन्हीं सब लोगों ने हिंदुस्तान के तमाम लोगों को हमको दहरिया कह करके और खड़े थे वहां नरसिम्हा राव के साथ, जो भी मिल करके जिन्होंने बाबरी मस्जिद गिरा दी, और बाबरी मस्जिद के गिराने के खिलाफ क्या सारे हिंदुस्तान के मुसलमान खड़े हुए थे क्या? कौन लोग खड़े हुए थे? ये हम लोग खड़े हुए थे। मेरे जैसे लोगों ने सीने के ऊपर तमाम आज भी निशाना थे जो भरे, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और पंजाब हिंदू शिवसेना का भरे दिन, जिस दिन वो हो रहा था शिलान्यास, उस दिन विरोध किया था वहां जाकर के। और अफजल साहब उसी पार्टी में है जिस पार्टी ने इसको गिराने का काम किया था। खैर छोड़िए, उस सब बातों की बात नहीं करनी है इस वक्त, क्योंकि तो लोग अपनी ये बात सही कि भ्रष्टाचार है और कोर्ट के अंदर भ्रष्टाचार है और कहां है भ्रष्टाचार को साफ करने की बात। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कल एक और खास बात हुई मुल्क के अंदर, परसों पहली बार जुडिशरी में अगर भ्रष्टाचार है तो उसके खिलाफ भी हमने राज्यसभा में आजाद हिंदुस्तान के 64 साल में पहली बार हाई कोर्ट के जज के खिलाफ, सौमित्र सेन के खिलाफ, पार्लियामेंट के अंदर हमने कोई 8 महीने पहले से अवमानना का, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का, उनको हटा देने का एक मुहिम चलाई थी और पार्लियामेंट में हमने उसको पास करा करके छोड़ दिया है लोकसभा के हवाले। और आजाद हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार की जुडिशरी में, न्यायपालिका में, जो इंसाफ का इदारा है उसमें जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ एक नई कहानी लिखी जाएगी, एक नया दस्तावेज लिखा जाएगा जब उनको हटाया जाएगा। तो लड़ाई कहीं ना कहीं तो शुरू करनी होगी। और मुसलमान हैं कि नहीं, दलित हैं कि नहीं, उनको नहीं पता। इस देश के अंदर 643 जिलों के अंदर जुडिशरी की बात करें तो आज देश के अंदर इस मुहिम पर की भ्रष्टाचार खत्म हो 156 डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने हड़ताल की, 13 हाईकोर्ट के इदारों में हड़ताल हो गई। आज देश के अंदर रोज स्कूल और कॉलेज बंद हो रहे हैं। आरएसएस है और बीजेपी, उसका खतरा हमको मालूम है, लेकिन उसी आरएसएस और बीजेपी के साथ मिलकर के महंगाई के खिलाफ इसी लोकपाल बिल से पहले, आज से 10 दिन पहले, सरकार और सरकार की पार्टियों ने मिलकर के एक रेजोल्यूशन पास कर लिया। हमने उसकी भी मुखालफत की, बात कही अपनी, ठीक है, जिस और ये लड़ाई लड़ी जाएगी और सबको मिलकर, न सब कभी आवेंगे और न सब कभी शामिल होंगे, लेकिन उसकी लड़ाई के दौर में रोक दिया जाएगा क्या? हमारी आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए थे क्या? सब कुछ बैठे देख रहे थे, कुछ डरे हुए थे, कुछ खामोश थे, कुछ लोग थे। 1936 में जब किसान सभा बन गई तब गांव के किसान भी लग गए। न सिर्फ गांधी जी गए थे चंपारण में, उसके बाद वापस आ गए। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जब आवाज उठा दी कि लड़ाई के अंदर हम एक ऐसा आजाद हिंदुस्तान चाहते हैं जिसमें राजे और रजवाड़े खत्म हो, सामंती खत्म हो, सामंत खत्म हो, जमीने जो धरती को जोते हुए वो धरती का मालिक हो, ये बात कही तब किसान और खेत मजदूर और गांव जुटा राजे रजवाड़ों के साथ। आज भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हुए हैं वो पढ़े लिखे नौजवान, वो MBA करने वाले, वो डॉक्टर करने वाले, वो गांव का, उनको आप अगर जाति और धर्म के बाड़ों में बांधना चाहते हैं, उस चश्मे से देखना चाहते हैं तो देखिए। अभी आपने, हमारे दोस्त ने वो नहीं देखा, उसने मुबारक के खिलाफ इजिप्ट में, मिस्र में, काहिरा में जो लाखों लोग इकट्ठा हुए उसमें कितने दुनिया थे, कितने रंगाई थे, कितने शिया थे, कितने सुन्नी थे, कितने बरेलवी थे, कितने देवबंदी थे, ये सब देखने की जरूरत है। देखिए आप, इसी को देखिए, इसी काम में लगे रहिए, इस काम में लगे रह करके आप किन ताकतों के साथ खड़े होते हैं ये देखने की जगह। सीना खोल करके जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है उनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, जो भ्रष्टाचार के साथ हैं उनको किनारे फेंकना पड़ेगा, और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं उस कानून को बनाने के लिए 2-4 कदम भी आगे चल सके तो बेहतर ही होगा। प्राइम मिनिस्टर की को लोकपाल की जग में लाया जाए, और तमाम मसलों पर उस पर मतभेद हो सकते हैं। मैं यह कहता हूं, गंगा को अगर साफ करना है, गंगा का पानी अगर बहुत गंदा हो गया है तो पटना और दिल्ली में और लखनऊ में और कानपुर में साफ करने से नहीं होगा। गंगा की सफाई का काम, यहाँ गंगा शुरू होती है गंगोत्री, वहां से करना होगा, तब गंगा साफ होगी।
बहुत बहुत शुक्रिया अंजान साहब। افضل صاحب
جی
آپ نے گفتگو ملاحظہ فرمائی انجان صاحب کی.
بالکل ملاحظہ فرمائی, مجھے بڑا افسوس ہے سننے کے بعد انجان صاحب کی ساری گفتگو.
جی
انہوں نے ابھی آر ایس ایس اور بی جے پی کی بات کی, آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شاید اس کو مذہبی مسئلہ بنا رہے ہیں. بالکل نہیں بنا رہے ہیں, ہم اس کو بالکل مذہبی دائرے میں نہیں بانٹ رہے ہیں. لیکن میں جانتا ہوں کہ اتل انجان صاحب بہت ہوش کی سیاست کرتے ہیں, جوش کی سیاست نہیں کرتے ہیں. وہ جس بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ وہ اس بات کا اعتراف کرنے میں کیوں چوک رہے ہیں کہ اس پوری تحریک میں آر ایس ایس کام کر رہی ہے. اور مجھے وہ بتائیں کہ میں اس کو ہندو اور مسلمان کے دائرے میں نہیں بانٹ رہا. وہ مثال دے رہے تھے مجھے ابھی مصر کی یا کسی دوسرے ملک کی, براہ کرم ان ملکوں سے ہمارے ملک کی تلنا ان کو نہیں کرنی چاہیے. اس ملک میں ڈیموکریسی ہے, اس ملک میں آزادی ہے, اس ملک کے اندر جمہوریت ہے, اس ملک کے اندر ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. ڈکٹیٹرشپ کے جگہ پر چلنے والی تحریکوں کا رنگ اور روپ بالکل الگ ہوتا ہے, اور ایک جمہوری ملک میں جو تحریکیں چلتی ہیں اس کا روپ بالکل الگ ہوتا ہے. مجھے افسوس یہ ہے کہ انہوں نے ایک بات کہی کہ میں اس پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں جس نے بابری مسجد گرائی. میں اس پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا ہوں. بابری مسجد گرانے والی بھارتی جنتا پارٹی اور آر ایس ایس کے لوگ تھے, وہی آج انا کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. اسی لیے مسلمان اس کے ساتھ جانے سے کتراتا ہے, اسی لیے ویکر سیکشن اس کے ساتھ جانے سے کتراتا ہے. میں خانوں میں نہیں بانٹ رہا ہوں, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ کمیونسٹوں سے زیادہ عوامی تحریک کا تجربہ کسی کو بھی نہیں ہے. اگر ایک کمیونسٹ یہ بات کہے کہ اس کو خانوں میں بانٹنے والی بات ہو رہی ہے, لیکن میں تو سمجھتا ہوں وہ تو سماج کے تمام طبقوں کو لے کر کے ساتھ چلیں گے. جہاں تک انہوں نے کہا کہ جب بابری مسجد شہید ہوئی تو ہم نے گولیاں کھائی, میں ان کا شکر گزار ہوں. اور کمیونسٹ پارٹیوں کے اس رول کی میرا خیال ہے کہ ہمارے منہ سے ہمیشہ تعریف نکلی ہے, میرے اخبار نے ہمیشہ ان کے بارے میں اچھا لکھا ہے. لیکن اس موقع پر ہم صرف ایک ایشو کو لے کر کے اپنی آنکھیں ان طاقتوں کی طرف سے بند نہیں کر سکتے جنہوں نے اس دیش کو بانٹنے کا کام کیا ہے, جنہوں نے اس دیش کے اندر طبقوں کو جو ہے لڑوانے کا کام کیا ہے, جنہوں نے اس دیش کے اندر خون بہایا ہے, جنہوں نے گجرات اور مراد آباد جیسے فسادات جو ہیں وہ ہم کو تحفے میں دیے ہیں. ہم ایسی طاقتوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے احتیاط ضرور برتیں گے, میرا صرف اتنا کہنا ہے. اور اس تحریک کو میں کسی بھی حالت میں نے یہ نہیں کہا کہ کرپشن کے خلاف جو تحریک ہے وہ غلط ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی تحریک چلاتا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں اور ان کا سیاسی مفاد کیا ہے. وہی بھارتیہ جنتا پارٹی جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی لوکپال بل لانے سے کتراتی رہی, آج بھارتیہ جنتا پارٹی کیسے انا ہزارے کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے؟ کیا اس کا مقصد جو ہے ان کو انجان صاحب کو سمجھ میں نہیں آ رہا؟ کیا انجان صاحب کو بنگال میں بھارتیہ جنتا پارٹی کا رول پتا نہیں ہے؟ تو میں تو ایک بات یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو انجان صاحب جیسے لوگوں کو اپنے صف میں کھڑا ہوا مانتا تھا, اور لیکن آج جو میں گفتگو کر رہا ہوں تو مجھے یہ ضرور کہنا پڑے گا کہ انہیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس تحریک کے پیچھے کون لوگ ہیں, کون اسے آج کنٹرول کر رہے ہیں. یہ جو کروڑوں روپیہ آ رہا ہے یہ عوامی پیسہ نہیں ہے, کہیں چندہ جمع نہیں ہو رہا ہے. یہ پیسہ جو آ رہا ہے, لوگ جو آ رہے ہیں, یہ ایسے ہی نہیں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بڑی تعداد میں ایک نوجوان طبقہ ہے, بے روزگار ہے, اس کے اپنے مسائل ہیں, وہ بھی آ رہا ہے اور اس سے کوئی انکار نہیں ہے. ان کی جو گریما ہے اور ان کا جو درد ہے اس سے میں انکار نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں ان کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی تحریک جب چلتی ہے, کل اگر کوئی کمیونسٹ تحریک چلائیں تو میں خوشی کے ساتھ, اگر میرا میں سمجھوں گا کہ ایسے لوگ جن کی ایمانداری پہ مجھے زیادہ شک نہیں ہے تو میں ضرور ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. لیکن میں بھارتیہ جنتا پارٹی اور آر ایس ایس جیسی جماعتوں سے کی پش پناہی سے چلنے والی کسی تحریک کا حصہ بنوں اس لیے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسا نہیں ہے لوگ شامل ہیں, تو وہ سمبولک بھی اگر چاہیں تو سمبولک طور پر بھی اس کے اندر کچھ لوگ نظر نہیں آتے. انا کی ٹیم میں کوئی دلت ہے؟ انا کی پوری ٹیم میں کوئی مسلمان ہے؟ کیوں یہ تحریک چلتے ہوئے ان کو اس بات کا خیال نہیں رکھا گیا, ان کو اس بات کا خیال نہیں آیا کہ اس تحریک میں ہر طبقہ جڑنا چاہیے, ہر طبقے کو ساتھ لے کر کے چلنا چاہیے؟ انہوں نے کیوں اس تحریک کو علیحدہ رکھا؟ مہاراشٹر میں انا کا پرانا رول کیا رہا ہے اس پر میں زیادہ اس وقت بولنا نہیں چاہتا ہوں. ماحول ان کے بڑا فیور میں ہے اور میرا خیال ہے میں بولوں گا تو بات بہت کڑوی ہو جائے گی. انا کو ہم بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں اور آپ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں.
بہت بہت شکریہ افضل صاحب, لائن پہ رہیے گا. انجان صاحب
جی,
یہ اور بھی میں نے کچھ کالم پڑھے ہیں ہندوستانی اخباروں کے, اس میں کچھ اور لوگوں نے بھی کہا ہے کہ انا ہزارے کی जो इस वक्त जो तहरीक है इसको बीजेपी और आरएसएस की सरपरस्ती हासिल है, और बहुत हद तक उन्होंने इसको हाईजेक कर रखा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे?
अब सब अगर आपको वही दिखाई दे रहा है तो कोई बात नहीं है। कहते हैं कि सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखाई देता है। उसमें ये नहीं दिखाई दे रहा कि तमाम ऐसे लोग हैं जिनका किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। और हमने भी अभी 17 तारीख को उस भ्रष्टाचार के खिलाफ कॉल दी, हजारों हजार लोग सड़कों पर उतरे, और फिर हम 23 तारीख को 7 पार्टियों की तरफ से, हिंदुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक, तेलुगु देशम पार्टी, अन्ना डीएमके पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस दल, जनता दल सेकुलर और तमाम पार्टियों की तरफ से 23 तारीख को फिर हम देश के अंदर भ्रष्टाचार, महंगाई, लोकपाल बिल और इन सवालों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, करते रहेंगे। और कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, संघर्ष के मैदान में जब उतरते हैं तो अगर कुछ लोग आ भी रहे आरएसएस के खिलाफ तो वहीं बैठ करके लड़ाई नजरियात की होगी, बाहर बैठकर नहीं होगी। और कौन हाईजैक कर रहा है और कौन ने हाईजैक कर रहा है वो हमको नहीं कहना है। और जहां तक सवाल है कि शब्दों का और अन्ना के बारे में कौन है जिसको जिसकी पोस्टमार्टम करना हो करना हो, लेकिन हिंदुस्तान की सियासत में कुछ बात है। वो तस्वीरें जिन्होंने गाली बकी अन्ना को, कांग्रेस पार्टी की तरफ से गायब हो गई। पागल कहा उसको, आवारा कहा उसको, बदचलन कहा उसको, ये सब कहा है। ये हमारे हिंदुस्तान की सियासत में। और जहां तक फिर मैं अपने मित्र भीम अफजल से कहना चाहता हूँ कि यह काम अपना बंद कर दीजिए सोचने का, इसमें कितने दलित हैं और कितने मुसलमान। आप ही मुसलमान के पैरोकार नहीं रह गए इस देश के अंदर। आपसे कहना चाहता हूं कि इस देश को सेकुलर मिजाज को और सेकुलर कैरेक्टर को जब कभी भी हमला होगा आरएसएस और दूसरी तमाम ताकतों से, वह अक्सरियत की क्या कहते हैं फिरका परस्ती हो चाहे अकलियत की फिरका परस्ती हो, इस देश के अंदर अगर एक घूरे पर भी कोई रहेगा और कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा होगा वो कारकुन, उसके खिलाफ लड़ेगा। हमारा ये शानदार इतिहास है। हम बंगाल में क्यों हार गए और नहीं हार गए, हम ये कहना चाहते हैं कि 34 साल सरकार बनाने के बाद, दुनिया के अंदर एक इतिहास बनाने के बाद हार गए। अड़ता और कुछ कमी होगी यकीनन, हम उसको सोच रहे हैं। और ये भी कहें कि परिवर्तन की, बदलाव की लहर भी होती है। सन 77 में जो बच्चा पैदा हुआ वो आज 2011 में उसने सिर्फ कम्युनिस्टों की सरकार देखी बंगाल में और किसी की नहीं देखी, जिससे बदलाव भी चाहते थे, और तब भी 48% वोट पा करके दूसरे कम्युनिस्ट मुखालिफ कांग्रेस और ममता बनर्जी मिलकर के सरकार जीत गए। ठीक है, अच्छी बात है, ये जमहूरियत में होता है, उसका स्वागत है। हम 41.4% वोट पा करके भी हार गए, ठीक है, वो बड़ी बहुत फर्क नहीं है, चुनाव की बात है। और जहां तक आइकॉन बनते हैं, काम कौन करता है, और ये सारा का सारा आंदोलन मीडिया का है, इतना मीडिया को भी गाली न बका जाए फिर, वरना हम और आप, आपके इस रेडियो और इस टेलीविजन ईरान पर क्यों बात करें, ये भी तो मीडिया का हिस्सा है। मीडिया किसी के साथ होता है, मीडिया जो है, जो सरकार और जो बरसरे इक्तदार होते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ खड़ा होता है अपने को बचाने के लिए, अपनी दौलत को बढ़ाने के लिए, सब हम जानते हैं। हिंदुस्तान के अंदर जो मीडिया खड़ा हुआ है कई तरह का मीडिया है, उस मीडिया में लोग भी खड़े, और सब बच्चे, वो छोटे छोटे बच्चे, वो एमबीए के स्टूडेंट, वो डॉक्टर, वो वकील, वो सब मिडिल क्लास के वो लोग या दूसरे गांव के, सब आए तो गांव से ही हैं, वो सब के सब एकदम से खड़े हो गए हैं, और वो सब समझ नहीं पा रहे हैं। मैं अपने दोस्त भीम अफजल साहब से कहना चाहता हूँ, यह देखने का काम जरा बंद कर दीजिए। और जहां तक सवाल है कि बीजेपी और आरएसएस है, हम लड़ेंगे, और हम लड़ करके हमारे साथ कोई रहे या न रहे, और आप बंगाल की बात कर रहा हूँ कर रहे हैं, इस पूरे 34 साल में एक दो छुटपुट घटनाओं को छोड़ के गुजरात में बहुत कुछ हो गया, मुरादाबाद में बहुत कुछ हो गया, लेकिन पश्चिम बंगाल में वैसा एक नहीं हुआ। लेकिन एक मोहब्बत के मसले में एक नौजवान ने पूरा का पूरा आत्महत्या कर ली, या उसको मार दिया पुलिस की ताकत से, या उनके घर वालों ने मार दिया, जो उस सवाल को लेकर के पूरी कौम को उबाल करके एक जगह खड़ा करना और एक सियासी फैसला लेना, मैं समझता हूँ गलत है। और उस गलत को आज नहीं तो कल लोग महसूस करेंगे और समझेंगे। जहां तक लोकपाल का बिल है, भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई बात नहीं हो सकती जब तक अगर हम मजबूती के साथ लड़ने के लिए उसके अंदर हमारे कानून में, आईन में बदलाव की बात नहीं करते, भ्रष्टाचार की लड़ाई नहीं हो सकती। और इसलिए स्वयं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि सीजर की अहिल्या को भी एतमाद हासिल करना चाहिए, सीजर की पत्नी को भी अविश्वास से परे रहना चाहिए। तो जब ये सब बात कह रहे हैं तो फिर काहे की परेशानी है, आ जाओ ना खुले मैदान में, कहो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट जो है और उसका दफातर वो जो है वो लोकपाल की परिधि के अंदर उसकी जद में होगा, क्या परेशानी है, क्यों बहस कर रहे हो, क्यों आरएसएस को मुद्दा दे रहे हो, क्यों आरएसएस को भड़का रहे हो, और आरएसएस के हाथ में मुद्दा देने की पहल कौन कर रहा है, तुम्ही ने तो की, तुम्हारी सरकार ने तो ही की मनमोहन सिंह जी। तो सवाल ये है कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के तनाजे पर आरएसएस को रोटियां किसने सेकने दी, सरदार बूटा सिंह जो गृहमंत्री थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने ही तो शिलान्यास कराया था, नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने ही तो शिलान्यास कराया था, राजीव गांधी ने पूरब की मुंह करके फैजाबाद की मुंह करके पहली इलेक्शन रैली वहीं जाकर तो की थी। तो फिसलन भरे रास्ते से फिरका परस्ती के सवाल पर फिसलन पैदा हो जाए तो मजबूत फिरका परस्त ताकतें होती हैं अक्सरियत की, अकलियत की, दोनों खड़े हो जाते हैं तो हिंदुस्तान का आईन टूटता है, चरमराता है, उस पर खरोंच आती है। मीम अफजल साहब जैसे हमारे दोस्त दानिश्वर साथी, अगर फिरका परस्ती के खिलाफ हम लड़ेंगे तो हमें उम्मीद है कि हमारे साथ खड़े होंगे, वो कल भी मांझी में भी खड़े हुए थे हमारे साथ। लेकिन मैं जानता हूं मजबूरियां, कुछ आपकी भी मजबूरियां हैं, कुछ आपके भी दायरे हैं, सियासत में सब कुछ हासिल करने के लिए बहुत कुछ समझौते करने पड़ते हैं। अतुल कुमार अंजान तो लड़ रहा है सड़कों पर, नीम अफजल साहब हमको किसी ने एम्बेसडर नहीं बनाया, हमको राज्यसभा नहीं बनाया, क्योंकि तो हमारी बात समझ में नहीं आती है, फिरका परस्त ताकतों को भी नहीं जाती, सही जो गैर फिरका परस्त उनको भी नहीं है, हमारी पार्टी की जब ताकत होगी तो देखा जाएगा। हम लोग कोशिश करते हैं कि बदनामी के रास्ते से न रहे। अपनी तरफ से आज तक नीम अफजल साहब आप भी जामा मस्जिद के इलाके में पैदल चलते थे, हिंदुस्तान की एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के बड़े अहदेदार होकर के भी आज भी मैं दिल्ली की सड़कों पर पैदल चल के अपनी बात कह रहा हूं, जमाना सुने या ना सुने, आप सुन लें तो आपका शुक्रिया,
बहुत बहुत शुक्रिया। अंजाद साहब लाइन पे मौजूद रहिएगा। अफजल साहब
जी,
जनाब ये वजीर आजम के मसले में कि उनको लोकपाल के दायरे में लाया जाए, जो मेन इख्तलाफ चल रहा है, इसमें कहा यह जा रहा है कि हिंदुस्तान की जितनी बड़ी सियासी पार्टियां हैं वो हत्ता भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस की हमनवा है इस सिलसिले में।
अब ये तो पार्लियामेंट के अंदर फैसला होगा
जी।
जो बिल पेश किया गया है
जी
उसके अंदर फिलहाल जो बात है वो आपके सामने है, और जाहिर है कि बातचीत का भी एक दौर शुरू होने वाला है जो मुझे लगता है। तो ये फैसला तो अब तहरीक चल रही है और तहरीक के आड़ में जिस किस्म का बिल लाने की कोशिश हो रही है, अब उसमें कितनी कामयाबी होती है, मैं अंजान साहब की बहुत सारी बातों का जवाब देना चाहता था लेकिन मेरा ख्याल है कि वो भी बहुत जज्बात में बह गए हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी कह दी जो बड़ी पर्सनलाइज किस्म की हैं। मैं उसका जवाब भी देना चाहता कि मैं राज्यसभा का मेंबर क्यों बना, एम्बेसडर क्यों बना, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैं आज भी जामा मस्जिद एरिया ही में रहता हूँ, मैंने कहीं दूसरी जगह अपना डेरा नहीं जमाया है, पैदल मैं भी सड़कों पर आज भी चलता हूँ, अगर उन्हें तजर्बा ना हो तो आकर के देख लें। और जहाँ तक फिरका परस्ती से लड़ने का सवाल है वो भी हमारे साथ खड़े रहे, हम भी उनके साथ खड़े रहे और हमेशा खड़े रहेंगे, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि इस वक्त वो एक तारीखी गलती कर रहे हैं इस बात को नज़रअंदाज करके कि इस तहरीक को कौन कंट्रोल कर रहा है और कौन लोग इसके पीछे हैं
जी। बहुत बहुत शुक्रिया अंजान साहब। आप लाइन पर हैं जनाब? अंजान साहब से राबता मुनकता हो गया है। अच्छा अफजल साहब, ये अन्ना हजारे ने जो 30 अगस्त तक की तारीख दी है
जी,
कि अगर 30 अगस्त तक बिल मंजूर न किया गया तो फिर उनकी जो है वो भूख हड़ताल तो जारी रहेगी मरते दम तक, जेल भरो तहरीक भी शुरू हो जाएगी, ये 30 अगस्त तक बिल पास करने में हुकूमत के सामने मजबूरी क्या है?
देखिए मजबूरी की कोई बात नहीं, कुछ बातें उसूली तौर पर होती है, हमारा मुद्दा इसके अंदर ये है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है या सड़क पर बैठे हुए और अवामी तहरीक का सहारा लेने वाले, क्या पूरी पार्लियामेंट की पूरी जो गरिमा है उसका जो विकार है जो उसका रोल है उसको खत्म करना चाहते हैं। मैं इससे एग्री करता हूं कि देखिए अवामी तहरीकें इसलिए चलाई जाती हैं ताकि पार्लियामेंट पर दबाव पड़े, कायदे से तो पार्लियामेंट ही को ये फैसला कर लेना चाहिए कि अवामी दबाव की जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर कहीं आवाम को लगता है कि पार्लियामेंट कोई सही काम नहीं कर रही, शाबानों के केस के अंदर ऐसा हुआ था, पार्लियामेंट को करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलना पड़ा, लेकिन एक बात जहन में रखिए कि ये देखना पड़ता है कि किस तहरीक, किसी तहरीक के खदोखाल क्या है, कौन लोग उसके पीछे हैं, कौन उसको कंट्रोल कर रहा है। आज कांग्रेस के ऊपर बहुत सारा लान तान की जा रही है, लेकिन कांग्रेस ये बात अच्छी तरह से जानती है कि अन्ना हजारे को एक तरह से जो पूरा इस वक्त जो सपोर्ट है वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट है। तो फिर भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट में खड़े होकर के क्यों नहीं लड़ती है इस बात को? जब बिल आए तो अमेंडमेंट पेश करें और बिल को गिरा दें।
जी अफजल साहब, इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी इनके अन्ना हजारे के पीछे है तो फिर भारतीय जनता पार्टी जो मेन बात है उसमें हिंदुस्तान को ये वजीर आजम को लोकपाल के दायरे में लाने की, कहा यह जाता है कि भारतीय जनता पार्टी भी इसके खिलाफ है। अगर वो इसके पीछे होती तो फिर वो ये जो मेन मुद्दा है इसकी मुखालफत क्यों करती? जी एम अफजल साहब से भी राबता मुनकता हो गया। बहरहाल बदनवानी के खिलाफ जी अनजान साहब से राबता हमारा हो गया है।
जी
अनजान साहब, बहुत से लोगों का कहना यह है कि एक कानूनी मसला भी है और वो यह है कि अन्ना हजारे और टीम अन्ना को कोई कानूनी हैसियत हासिल नहीं है पार्लियामेंट के काम में मुदाखलत करने की। कानून साजी अराकीन पार्लियामेंट का काम है, बाहर के लोगों का नहीं। दो मिनट का वक्त है हमारे पास।
ये कुछ लोग गलत फहमी के शिकार हैं। हिंदुस्तान का आईन हर आदमी को अपनी बात कहने का और अपनी बात को रखने की इजाजत देता है। कुछ लोग सीधे रख सकते हैं, कुछ लोग बजरिए मेंबर पार्लियामेंट के रख सकते हैं, इसलिए हर एक को अपनी बात कहने का हक है। यही तो हिंदुस्तान के आईन की सबसे खास बात है और सबसे सुंदर बात है। और अगर अन्ना हजारे और उनके साथियों को अपनी बात कहनी है तो उस की स्टैंडिंग कमेटी के सामने भी अपनी बात रख सकते हैं। और अभी ये बहस कोई 2-3 महीने चलेगी, एक दिन में खत्म होने वाली नहीं है। इसमें हर तरह की राय आने की जरूरत है और वो राय रखी जाएगी पार्लियामेंट में, उनकी तरफ से, उनके ऐवान में उनकी तरफ से उनके बिल को भी कोई लोग रख सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। इसलिए बातचीत का दरवाजा हमेशा खुला रहना चाहिए और जमहूरियत के अंदर डायलॉग सबसे बड़ी बात होती है, संवाद सबसे बड़ी बात है। जब सरकार संवाद तोड़ देना चाहती है तो सरकार एकदम आ जाती है हमलावर होकर। देखिए ना, इस पूरे मामले में सरकार की इतनी किरकिरी हुई है, क्यों गिरफ्तार किया? वो तो जा भी नहीं पहुंच पाए थे। जहां कानून टूटने की गुंजाइश थी 144 की, हमारे आईन के हिसाब से सीआरपीसी की एक धारा थी, वहां तो पहुंचे नहीं, घर पर गिरफ्तार। और फिर शाम आते आते वो सारी बातें खत्म करके आप रिहाई का जिक्र। तो इस सरकार की इतनी छूथू हुई है, इतनी छुक्का फजीहत हुई है कि सरकार बैकफुट पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है। इसलिए कि सरकार का दिलो दिमाग है नहीं। और जब आप भ्रष्ट हो जाते हैं, जब आप बदनमानी के शिकार हो जाते हैं, तब आप जो है आपका दिमाग भी आपके आपे से बाहर हो जाता है। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, ये जो नीम अफजल साहब ने कही बात, मुझे बहुत दुख हुआ। वो ये ढूंढ रहे हैं कि इसके अंदर कौन मुसलमान है और फिर वो ढूंढेंगे कि कौन इसके अंदर शिया है, कौन इसमें सुन्नी है, कौन बरेलवी है, कौन देवबंदी है, कौन मध्य साहिबी शिया है। ये सब क्या है तरीका? कौन इसमें दलित है और कौन गैर दलित है? अब सब आदमी अपना अपना बोर्ड लेकर घूमे कि हम फलाने हैं। और यही काम इस देश के अंदर हर जमहूरियत के आंदोलन को और सही आंदोलन को कमजोर करने के लिए किया जाता है। हमारे यहाँ भी लोग पूछते हैं, अतुल कुमार अनजान की जात नहीं मालूम पड़ रही है, किस जात के हैं? अरे कम्युनिस्ट पार्टी में कोई हरिजन लीडर नहीं है, कोई शेड्यूल कास्ट नहीं है, कोई मुस्लिम, अरे सारे हैं, तो हम बताते घूमे उनके बारे में। यही काम बीजेपी ने किया है, यही काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। इसलिए आज इस देश के अंदर जो बदउन्मानी है उसका सबसे ज्यादा नुकसान कौन है? जो गरीब लोग हैं। आज उनको अगर हम बदउन्मानी के खिलाफ लड़ सकते हैं और वो दौलत निकाल करके, आज सबसे बड़ी लड़ाई ये है। इस लड़ाई के साथ साथ जो हम कम्युनिस्ट लड़ रहे हैं कि देश की दौलत।
शुक्रिया शुक्रिया अनजान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने एम अफजल और अनजान दोनों की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। बहरहाल बदउनवानी ख़त्म होनी चाहिए, इस पर सबका इत्तेफाक है। तरीक़ेकार में कुछ इख्तलाफ हो सकता है। अन्ना हजारे की जहाँ तक तहरीक है, बज़ाहिर उनकी तहरीक को हिंदुस्तान भर में उनकी तहरीक की हिमायत की जा रही है। इसी के साथ अंदाज़े जहां अपने अख्तिताम को पहुंचता है। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं।